Şetelik. Şetelik. एक सार्थक यात्रा नए क्षेत्र की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
विश्व हिंदी सचिवालय के क्षितिज कार्यक्रम में हमारे सुनने वाले श्रोताओं को अश्विना का करजोर अभिवादन। आज हमारे सामने जापान के डाइटो बुंका यूनिवर्सिटी से हिंदी प्रोफेसर हिदेयाकी ईशिदा जी हैं। ईशिदा जी, आपका हम स्वागत करते हैं।
धन्यवाद।
आप हिंदी भाषा और हिंदी लिटरेचर के पूर्व प्रोफेसर रहे हैं। आप हिंदी लिटरेचर एंड शेड्यूल्ड मैगजीन फॉर जापान ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी लिटरेरी वर्क्स 2007 से एडिटर हैं। आपके 19 आर्टिकल्स हिंदी लिटरेचर में और ट्रांसलेशंस हिंदी से जापानीज, फिर 4 निबंध एडिटर ऑफ द बुक और जापान में हिंदी के पढ़ाव प्रकाशित हुए हैं। ईशिदा जी, हम आपका मॉरिशस के एमबीसी में स्वागत करते हैं। कृपया आप हमारे श्रोताओं को यह बताइए कि जापानीज होकर भी हिंदी के प्रति इतनी रुचि कैसे हुई और आप इस भाषा के साथ कैसे जुड़े, कृपया हमें बताइए।
नमस्कार। सबसे पहले मैं अपना परिचय थोड़ा मैं देना चाहूँगा। ये मेरा नाम ईशिदा है, मैं जापान से आया हूँ, मैं टोक्यो में रहता हूँ। वो अभी मेरी उम्र 75 साल की है। खैर, जब मैं कॉलेज हाई स्कूल का छात्र था, तब वो यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए मैं सोच रहा था मैं क्या करूं। तो मैंने सोचा मुझे एक एशिया के बारे में, एशिया के किसी देश के ऊपर अध्ययन करूंगा। ऐसा सोचकर मैंने ये फिर सोचा ये कौन सा देश अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो सबसे पहले देखा नज़दीक के देशों में, तो चीन, कोरिया वगैरह। तो बात यह है कि वो द्वितीय महायुद्ध में तो जापानी सेना वहाँ गई थी, और फिर उसके आगे वो दक्षिण पूर्व दक्षिण एशिया के देशों में भी जापानी सेना गई थी। तो ऐसा कहा जाता है अब भी वहाँ के लोगों में कुछ जापान के प्रति बहुत अच्छी भावना नहीं, कभी नहीं है,
है
तो इसलिए मैंने उन देशों को थोड़ा नमस्कार करके फिर दूसरे देशों के बारे में सोचा। तो हाँ, मैं वो एशिया के किसी देश के ऊपर करना चाहता था। तो फिर वो आगे देखा तो अरब वगैरह तो बहुत जापान से बहुत दूर है।
हाँ।
तो जापान के साथ कोई कैसा संबंध रहा था ये भी मुझे नहीं मालूम था, हाई स्कूल का छात्र था।
हाँ।
तो इसीलिए सबसे अंत में जो भारत आया है, तो भारत को देखा तो ये वैसे तो ये भारत ये हम जापानी लोग ज़्यादातर बौद्ध हैं, बुद्धिस्ट हैं।
हाँ।
तो ये भारत वो ये भगवान बुद्ध का देश है। इस रूप में हम जापानी लोग बहुत पुराने ज़माने से वो भारत का आदर करते आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा ये है, मुझे नहीं मालूम था वो द्वितीय महायुद्ध में जापानी सेना असल में थोड़ा बहुत वो भारत इंडिया तक वो पहुंच गई थी, और कुछ लड़ाई वगैरह भी हुई थी।
हाँ।
भी मैं नहीं जानता था। तो मैंने सोचा कि भारत के बारे में भारत के लोग जापानियों के प्रति वो ज़्यादा बुरी भावना नहीं रखते होंगे। तो ये सोचकर तो ये एक वो ये भगवान बुद्ध का देश है।
हाँ।
वो जापान के प्रति भारतीय लोग बुरी भावना नहीं रखते होंगे। ये दो कारणों से मैंने भारत को चुना था। तो भारत को चुनने के बाद यूनिवर्सिटी में वो हिंदी भाषा उस भारत के साथ वो जुड़ी हुई थी। तो हिंदी सीखना बिल्कुल, वो भारत को सीखने के लिए हिंदी भाषा भी सीखनी पड़ती थी। तो इस तरह मेरे वो हिंदी के साथ मैं जुड़ गया था।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब है कि गौतम बुद्ध जी के कारण आपका लगाव भारत से और हिंदी भाषा से हुआ।
जी जी।
देखिए, प्रेम हमेशा रहता है, जहाँ से हम जिसको चाहते हैं, जिसको मानते हैं, उसके प्रति हमारा लगाव बना रहता है। बहुत अच्छी बात है। आप हिंदी भाषा के उच्चारण पर बल देती हैं और आप तो बहुत अच्छी हिंदी बोल लेती हैं। जापान में रहते हुए भी वहाँ तो पता नहीं कोई बोलता भी होगा या नहीं, लेकिन आप तो बहुत अच्छी तरह से हिंदी बोलते हैं और समझ भी लेते हैं, और मैं भी समझ रही हूँ, हमारे श्रोतागण भी समझ रहे हैं, आपकी हिंदी बहुत बढ़िया है। तो सही उच्चारण जापान में कैसे हो पाता है, कृपया हमें बताइए।
बात यह है कि वो अब वो विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर ये मुझे बुलाया गया है, तो वहाँ वो ये वर्कशॉप वहाँ होना है।
हाँ।
तो वर्कशॉप का विषय है वो हिंदी उच्चारण।
जी हाँ।
तो वैसे तो वो भाषा शिक्षक के रूप में हैसियत से मैं छात्रों को ये उच्चारण की का महत्व, उच्चारण का महत्व बहुत हमेशा ये बताता हाँ। हूँ। फिर वो ये दूसरी बात ये है कि जापानियों की जापानी भाषा में जो उच्चारण की विशेषता है, तो हिंदी के उच्चारण के साथ मैं ये तुलना करता हूँ
हाँ।
तो काफ़ी अंतर है। तो कुछ वो उच्चारण जापानी छात्रों के लिए बहुत मुश्किल है, मेरे लिए भी अब भी मुश्किल है। तो उन उच्चारणों को ठीक से ये उनको सिखाना, तो ये मेरा एक ये भाषा शिक्षक के हैसियत से मुझे ये बड़ा ये मेरे लिए ये बड़ी वो उत्तरदायी जिम्मेदारी है। तो इस तरह मैं ये उच्चारण को ये छात्रों को ये अच्छे उच्चारण के लिए मैं ये प्रेरणा देना चाहता हूँ।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने। तो आप कह रहे हैं कि उच्चारण जापानीज वालों उन लोगों को ये अपनी भाषा बोलने में क्या कठिनाई होती है, आप कह रहे हैं कि उच्चारण में दिक्कत होती है, कैसे दिक्कत होती है?
जापानी भाषा उच्चारण के मामले में बहुत बहुत सिंपल भाषा है।
हाँ।
वैसे तो वे स्वर हैं, ये वावल ये सिर्फ पांच है।
हाँ।
आई हुए ये भारत से आया है, जापान ये वर्णमाला।
हाँ।
तो ये वैसे जापान में सिर्फ
पांच है। हाँ। है
हाँ। और ये वो ये व्यंजन है ना।
हाँ।
ये भी वो ज़्यादा नहीं है।
ओके।
तो वैसे तो हिंदी में जो ये महापुराण कहते
हाँ,
हैं
हाँ,
क
ख ग घ,
तो ये महापुराण जापानियों के लिए बहुत मुश्किल है,
उच्चारण करना मुश्किल हो जाता है। कैसे हाँ, क लेकिन ख ख मुश्किल हो जाता है।
जी जी।
ग घ मुश्किल हो जाता है। प फ
हाँ जी।
ब भ ये मुश्किल हो जाता है, लेकिन हिंदी भाषा में तो ये सब आ जाते हैं, व्यंजन में ये सब है इसमें।
जी जी जी।
तो इसीलिए मुश्किल मेरे देखने में हिंदी भाषी लोगों के लिए ये मुश्किल उतना नहीं है।
हाँ,
बोल लेते हैं।
जी, जी, जी। लेकिन हाँ, हमारे लिए बहुत मुश्किल है
आप लोगों के लिए, लेकिन आप तो अच्छी तरह से बोलते हैं। लेकिन जो सीखते हैं जापान में, जो हिंदी सीखते हैं, वे शायद बोल पाते होंगे।
नहीं, शुरू में तो ये मुश्किल
नहीं
है,
आता है। हाँ।
तो शुरू में वैसे हम लोग वो आ ई से हाँ, ये
शुरू करते हैं। हाँ।
ये वो वर्णमाला वो अक्षर के साथ, फिर वो उच्चारण भी ये दोनों साथ साथ ये शुरू
हाँ,
करते हैं।
हाँ।
तो इस तरह वो ये छात्र वे
हाँ, छात्र सीख जाते हैं। हाँ, लेकिन बोल भी पाते हैं।
बोलना बहुत आगे जाकर
बोलते
बोलेंगे।
लेकिन क्या आप अपनी कक्षा में, कैसे आप बोल रहे हैं, पढ़ा रहे थे, जब पढ़ाते हैं या पढ़ाते थे, तो क्या बच्चे हिंदी में, आपके वहाँ के जापान के हैं, वहाँ के बच्चे हिंदी बोल पाते थे या कक्षा में हिंदी बोलते थे?
वैसे तो हिंदी बोलने के लिए हम लोग वो उकसाते हैं।
हाँ, प्रोत्साहित करते
तो कभी
हैं।
कभी वो कुछ
एक दो शब्द
हाँ, थोड़ा बहुत सीखने के बाद वो जवाब भी देने लगते हैं।
हाँ, हाँ, एक दो शब्द आ जाते होंगे शायद, जब जापानी भाषा जब बोलते हैं तो हिंदी के भी एक दो शब्द बोल देते हैं। बहुत अच्छी बात है। जापान में हिंदी की पढ़ाई कैसे होती है, कैसे शुरू होती है वहाँ पर?
वो ये जैसा कि मैंने कहा है, मेरा अपना व्यक्तिगत वो कारण है।
हाँ।
तो इस तरह वो छात्रों के सब वो अपने अपने वो व्यक्तिगत कारण होगा।
हाँ।
लेकिन वो जापान में जैसे वो हिंदी तो कहीं भी दिखाई नहीं देती
नहीं,
है,
नहीं
कोई बोलने वाला नहीं, नहीं है जापान में, सिर्फ हम लोग जापानी भाषा बोलते हैं। तो जो लोग वो भारत के प्रति वो आकर्षित है या वो रुचि रखते हैं
हाँ।
तो वो लोग यूनिवर्सिटी में आकर वो ये पढ़ना शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा है कि आई से शुरू करते हैं
हाँ, हाँ।
तो इस तरह वो धीरे धीरे
धीरे धीरे सीख लेते हैं
जी,
सीख लेते हैं। लेकिन शब्द उनके लिए कठिन होगा, हिंदी
हाँ,
के शब्द
कठिन है,
कठिन है
जी, जी।
लेकिन बोल लेते हैं धीरे धीरे, सीख
धीरे
लेते
धीरे
हैं,
जी, सीख, धीरे सीख लेते हैं।
जैसे आपका लगाव भारत देश से है, गौतम बुद्ध जी से है, तो शायद उन लोगों का लगाव भी भारत से होगा, इसीलिए वे सीखते होंगे ना।
हाँ ये भी हो सकता है
हाँ।
और वो ये बुद्धिज्म के ऊपर मैं जब भी मैं थोड़ा बहुत मेरी जानकारी है
हाँ।
मैं उसके बारे में मैं बोलता हूँ
हाँ।
तो छात्र वो रुचि लेकर ये सुनते हैं,
सुनते हैं
तो इस तरह
हाँ।
वे हमारा वो जो ये संबंध
हाँ,
ये बन
हाँ,
जाते
बन जाता है हाँ।, हाँ लेकिन गौतम बुद्ध जो थे हाँ, उनके तो बहुत फॉलोअर्स होंगे जापान में
जी,
होंगे ना
जी, लगभग 90% जापानी तो बौद्ध
बुद्धिज्म बौद्ध है
जी।
ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वे लोग वे लोग भी रुचि रखते होंगे बौद्ध जी, बुद्ध जी कहाँ से आए हैं, उनकी कहानी, उनसे प्रेरणा मिलती होगी उन लोगों को
जी,
भी
जी। वैसे तो हिंदी भाषा को नहीं जानते लेकिन
हाँ।
भारत के बारे में सुनना जानना बहुत वो उनको अच्छा लगता है।
अच्छा लगता है हाँ, ये तो अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आप मॉरिशस वासियों को, मॉरिशस के शिक्षकों को खासकर हिंदी हिंदी भाषा पर क्या बोल सकते हैं, क्या सुझाव दे सकते हैं?
तो ये विषय वो ये उच्चारण ये विषय है तो उच्चारण के बारे में ये मेरा कुछ व्यक्तिगत ये मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो वैसे उच्चारण में कभी कभी वो भारत में भी भारत के जो हिंदी भाषी लोगों में बहुत क्योंकि वो बहुत ये वो ये बड़ा है वो जगह वैसे
हाँ।
वो उत्तर प्रदेश सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं है बिहार से और राजस्थान वगैरह बहुत बड़ा
बहुत
है
बड़ा देश
तो वो
है।
हर इलाके के कुछ अपने अपने कुछ विशेषताएं हैं वैसे व्याकरण में ज़्यादा वो अंतर है तो उच्चारण में भी कभी कभी कुछ अंतर हो
जाता
है,
जाता है
तो,
हाँ,
तो जिस तरह हम लोग वो सुनते हैं वो भारतीय आदमी है तो भारतीय आदमी बहुत सही उच्चारण में बोलता है ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं कभी कभी कभी
हाँ।
कभी कभी कुछ अजीब से उच्चारण में बोलने वाले भी
हाँ,
हैं
हाँ,
वैसे
हाँ।
ये वो बहुत साधारण शब्द है ये वो हम लोगों ने सुना है या सीखा है क्योंकि वो मैंने 50 साल पहले ये सीखा था
हाँ।
तो उन दिनों आकाशवाणी में वो अनाउंसर ये वो ही जरूर कहते थे तो आप आजकल ना यह वह ऐसा बोलने वाले भी कम नहीं है
हाँ,
इंडिया में
हाँ, हाँ।
तो वो तो ये वो है या यह वह है
हाँ।
ये अंतर
अंतर
अब
अंतर,
है तो हाँ। ये बहुत ये बुनियादी शब्द है ना
हाँ,
तो
हाँ,
इस बुनियादी शब्दों में भी इतना उच्चारण में इतना बड़ा अंतर है तो हम कैसे सिखाएंगे
कैसे
तो
सिखाएंगे?
ये इस तरह की वो ये मुश्किल है
मुश्किल है हाँ
है।
मुश्किल है लेकिन हिंदी में शुद्ध हिंदी में वो का प्रयोग नहीं करते हैं, वे बोलते हैं यह, कैसे आपने कहा यह वह ये वे ना, लेकिन फिर भी यह प्रचलित भाषा जब बोलते हैं तो ये सब
जी।
आ जाते और वो भी भारत में ये सब शब्द बोलते हैं, मेरे को ऐसा चाहिए मेरे को, लेकिन हम शुद्ध भाषा में मुझको बोलते हैं हाँ, तो ये सब आ जाता है। तो ईशिदा जी आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें बहुत खुशी हुई आपसे बातें करके, हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें पहली बार मैं एक जापान से आए हुए एक प्रोफेसर के साथ बात कर रही हूँ तो मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे आप प्रेरणा दे रहे हैं कि कैसे वहाँ पर हिंदी सीखते हैं सिखाते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। तो आपको हम बहुत धन्यवाद देते हैं,
धन्यवाद।
फिर यहाँ के टेक्नीशियन यूसुफ जी को भी हम बहुत धन्यवाद देते हैं। और प्रिय श्रोतागण, आज का हमारा क्षितिज कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो रहा है। आशा है कि एक अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर से भेंट करेंगे, तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।
क्षितिज क्षितिज, एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।